मतलब उसको प्रोसेस करते हैं। साउंड का थोड़ा आप लोगों को आवाज आ रही है गर्ल्स में? आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह। एसी को बंद कर दूं? चलें फिर क्लास शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरब्बुकल गफूरुर रहमा लव युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जला लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला। وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 59 को 58 एंड 59 को डिस्कस करेंगे। मारफुल कुरान में पेज नंबर 619 के ऊपर ये आयात हैं, इनका तर्जुमा भी 620 के ऊपर है। आयत नंबर 58 एंड 59। तो इनका तर्जुमा पहले कर लेते हैं, फिर इनके बारे में कुछ बात करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इनके अंदर, वरब्बुकल वरब्बुका, क्या मतलब है इसका? एंड योर लॉर्ड, एंड योर रब, आपका रब, ठीक है। अल गफूरु ज़ुर रहमा, अल गफूर का मतलब होता है जो के माफ करने वाला है, ठीक है, मगफिरत करने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला, उसको गफूर कहते हैं। गफूर अल्लाह ताला की क्वालिटीज में से एक क्वालिटी है, माफ कर देना, ठीक है। अल्लाह ताला के, वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला के नाम है बहुत सारे, आपने सुना है अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना उनको कहते हैं, राइट। तो अल्लाह ताला के नाम जो है ना, वो दो तरह के नाम है। एक कहलाता है अल्लाह ताला का जाती नाम, अल्लाह ताला का पर्सनल नेम, ठीक है। पर्सनल नेम अल्लाह ताला का क्या है, जाती नाम, जिसको कोई बताएगा अल्लाह ताला का जाती नाम क्या है? अल्लाह, ठीक है। अल्लाह जो है ये अल्लाह ताला का जाती यानी पर्सनल नेम है, ठीक है। जैसे मैं, जैसे कि आपका नाम शायद क्या है, अब्दुल्ला, और आपका नाम इब्राहिम। जब अब्दुल्ला का पता लग जाए तो इब्राहिम का खुद ही पता लग जाता है, दूसरा इब्राहिम ही होगा, वालेकुम सलाम, ठीक है। तो ये अब्दुल्ला, इब्राहिम, अहमद, हमजा, रामेस, अब्दुल्ला एक और भी है माशाल्लाह, और मुस्तफ़ा, ये सब जो है आप लोगों के क्या है, ये जाती नाम कहलाते हैं, पर्सनल नेम, ठीक है। क्योंकि ये वो नाम है जो कि आपका रखा गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे तरह के नाम होते हैं अल्लाह ताला के, जिनको कहते हैं अल्लाह ताला के सिफाती नाम। सिफाती नाम का मतलब क्या होता है? जो अल्लाह ताला की क्वालिटेटिव या क्वालिफाइंग क्वालिटेटिव नाम है, क्वालिटीज हैं अल्लाह ताला की, ठीक है। वो कैसे हैं, क्या है, कोई इनमें से बताएगा एक एक करके? जी मुसफ़ा, आपसे शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से कोई नाम बताएं। रहमान, ठीक है। अब्दुल्ला, आप कोई नाम बताएं सिफाती नाम, कोई भी अल्लाह ताला के सिफाती नाम। पता है, मुझे पता है, आपको पता है, अभी नहीं आ रहे। क्वालिटीज जो अल्लाह ताला की होती हैं, रहीम, रहमान, रहीम, और मलिक, बिल्कुल सही है। और माशाल्लाह, आपने याद किया है नाम, अल मलिकुल कुद्दूस और अस्सलामुल
जी
मुमिन मुहैमिन, माशाल्लाह, तो नाम याद किए हैं उन्होंने, तो ठीक है। और आप लोगों को पता है अजीजुल जब्बार और मुतकब्बिर और अहमद। अच्छा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो सिफाती नाम है नजारा के। तो उनमें से एक सिफाती नाम जो है वो अल गफूर भी है, यानी माफ करने वाला, ठीक है। क्योंकि ये अल्लाह ताला की क्वालिटी है, सिफत है अल्लाह ताला की, ठीक है। तो जैसे ये ऐसे होता है कि भाई एक बच्चे का नाम है मुस्तफा, ठीक है, ये तो उसका जाती नाम हो गया, लेकिन मुस्तफा बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो अच्छा बच्चा जो है ना, ये अच्छा होना ये इसकी सिफत है, ठीक है। माशाल्लाह, एक का नाम है अशरफ, अशरफ लंबा है, ठीक है, माशाल्लाह टॉल है वो, ठीक है। तो लंबा होना चाहिए इसकी सिफत है, ठीक है। तो ये उसका सिफाती नाम कह देंगे, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में कभी कहते हैं जी अशरफ लंबू, ठीक है, लंबू जो है ये सिफाती नाम हो गया, ठीक है, मजाक में कह देते हैं। तो उस तरह से अल्लाह ताला के जाती और सिफाती नाम है, ठीक है। दूसरा अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर, जू अर रहमा। जू रहमा जो है ना, ये कोई सिफाती नाम नहीं है, बल्कि जू का मतलब होता है वाला, ठीक है, द वन हु इज वाला। अर रहमा, रहमत वाला, ठीक है। रहमत का क्या मतलब होगा इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें आप, हमजा, रहमत इंग्लिश में क्या कहेंगे, नाम साहब बता, रहमत, मर्सी, मर्सीफुल नहीं बल्कि मर्सी। जू रहमा मीन द वन हु इज मर्सीफुल या द वन हु हैज मर्सी, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपने बारे में कुरान की आयत के अंदर फरमा रहे हैं कि तुम्हारा रब जो है वो फॉरगिविंग है और बहुत मर्सीफुल है, ठीक है। लव यू आखिज़ुहुम बिमा कसबू, अगर अल्लाह ताला पकड़ लेता, ठीक है ना, किनको, इन लोगों को, ये जो कुफर करने वाले हैं, अल्लाह ताला का इनकार करने वाले हैं, काफिर लोग, ठीक है। अगर अल्लाह ताला इनको पकड़ लेता, ठीक है, या इनको कैप्चर कर लेता, बिमा कसबू, जो उन लोगों ने बुरे काम किए हैं उनकी वजह से, जो ये लोग बुरे काम करते हैं काफिर लोग, अगर उनकी वजह से अल्लाह ताला उनको फौरन से पकड़ लेता ना, लअज्जल लहुमुल अज़ाब, तो, और यानी एक मिनट, मैं इसके एग्जैक्ट तर्जुमा इस तरीके से करता हूँ जैसे कि इन्होंने ही किया है, ठीक है। ही वुड कॉज देयर पनिशमेंट टू कम सून, लअज्जला यानी जल्दी कर देता इनके ऊपर जो पनिशमेंट आने वाली है, ठीक है। यानी अगर ये जो काफिर बुरे अमाल करते हैं, अगर अल्लाह ताला इनको ढील ना देता, इनको टाइम ना देता कि ये तौबा कर लें, ये अपने गलत आमाल को छोड़ दें, ठीक है, नेक बन जाएं, मुसलमान बन जाएं, तो फिर क्या होता कि इनके ऊपर अल्लाह ताला की जो पनिशमेंट है ना वो बहुत जल्दी आ जाती, क्योंकि इनके बुरे काम जो हैं वो इतने ज्यादा बुरे हैं, इतने ज्यादा बुरे हैं कि ये इमीडिएट पनिशमेंट मांगते हैं, ठीक है। यानी दे कॉल फॉर इमीडिएट पनिशमेंट, फौरन से इनको पनिशमेंट मिल जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला इनको फौरन से पकड़ते नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इनको टाइम देते हैं, ठीक है, ढील देते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं ना। फिर अल्लाह ताला कहते हैं बल लहुम मौइदुन, बल्कि इनके लिए अल्लाह ताला एक एक टाइम देते हैं, इनको एक टाइम सेट किया हुआ है इनके लिए, देयर इज एन अपॉइंटेड टाइम। मौइदुन का तर्जुमा इंग्लिश में होगा अपॉइंटेड टाइम, ठीक है। यानी इनकी मौत का वक्त जो है वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है, उससे पहले अल्लाह ताला इनको मौत नहीं दे देते कि भाई तुम इतना बुरा काम कर रहे हो, तुम काफिर हो, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो बस तुम अभी मर जाओ, ایسا نہیں کرتے بلکہ ان کو موت تک جو ہے وہ مہلت دیتے ہیں. لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. اور یہ جو موت کا وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک فکس کیا ہوا ہے, یہ ایسا وقت ہے کہ جب یہ وقت آ جائے گا نا تو پھر ان کے لیے اس سے بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ یہ موت سے بھاگ جائیں اور منع کر دیں موت کے فرشتے کو کہ جی میں نہیں مرتا, ٹھیک ہے تم واپس چلے جاؤ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو وِد یو, میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ مجھے تھوڑا اور اس دنیا کے اندر رہنا ہے. ایسا یہ لوگ نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. They will not be able to find a refuge from death. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹاؤنز تھے, قرآ کہتے ہیں ٹاؤنز کو, بستیوں کو, ٹھیک ہے, تو ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. لَمَّا ظَلَمُوا because of the ظلم that they used to do, the transgression that they used to do. اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کی بستیوں کو ہلاک کر دیا. کون سی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا؟ کوئی جواب دے گا کلاسز میں سے, تینوں کلاس روم میں سے کوئی کسی بستی کا نام بتائیں؟ سمود ایک بستی کا نام تھا, اس بستی میں اس جگہ کے رہنے والوں کا نام سمود تھا, تو اس سے اس بستی کو بھی سمود ہی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سمود از ون آف دیم. اور کوئی, آد ایک اور بستی تھی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. لوط علیہ السلام تو نبی کا نام تھا لیکن ان کے جو لوگ تھے نا, ان کے یعنی ٹرائب جو تھا جس کے اندر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, تو ان کو قوم لوط کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لوط علیہ السلام کی قوم, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور کوئی, ہاں, نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے, نوح علیہ السلام کو ہلاک نہیں کیا نا, ان کے جو لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. تو یہ کچھ بستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. لما ظلموا, اور اس کی ریزن کیا بنی؟ وین دے ٹرانسگریسڈ. لما کا مطلب ہوتا ہے وین, تو وین دے ٹرانسگریسڈ ان دیئر, یعنی جب وہ ٹرانسگریس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا گناہ کیا کہ وہ لمٹس کراس کر گئے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے ٹرانسگریشن کر لی, بغاوت کر لی, ریبیلین کر لی, تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا and we made an appointed time for their destruction. یعنی ان کی destruction جو ہے وہ وہی جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موت کا وقت رکھا تھا, تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو destroy نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بارے, ان دو آیات کے تحت جو ہے نا ہم نے بہت ساری discussions کرنی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت رحیم اور کریم ہیں, ٹھیک ہے, معاف کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں دینے والے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور معافی کا ہمیں بہت ساری چیزوں سے پتہ لگتا ہے. ان میں سے ایک سائن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن عطا کیا, ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے, کلام ہے اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کیسے شروع ہوتا ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا چیز پڑھنی ہوتی ہے؟ کیسے آپ قرآن کو شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھیک ہے. تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی, اللہ کی شیطان مردود سے, ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ تعوذ پڑھ لیتے ہیں جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو پناہ ہے نا, ریفیوج ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کے اندر آ جاؤ, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہیز اے پلیس آف ریفیوج فار اس, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسٹ وانٹس اس کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں یہ دعا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچا لیجئے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں تم خود بچو, تم اس شیطان دشمن سے خود سے بچو, یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہمارے اوپر, ٹھیک ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جی آپ فار ایگزامپل کسی جنگل میں جائیں, ٹھیک ہے, اب جنگل میں جو ہے وہ آپ کو آپ کے کسی ریلیٹو نے آپ کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ بھائی اب جنگل کے اندر جو جانور ہے نا, شیر ہے اور وولف ہے اور اس طرح کے دوسرے جو ہیں جو کہ کھا لیتے ہیں انسانوں کو, ٹھیک ہے, تو اب تم خود ہی ان سے بچو, میں جا رہا ہوں یہاں سے,
ठीक है, मैं जा रहा हूं, अब आप जो है ना वो खुद ही इन सब से बचें, मेरे पास नहीं आना तुम, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप उस जंगल के अंदर यू विल बी ऑल बाय योरसेल्फ, अकेले होंगे, और आपको खुद ही जो है वो भागना होगा, खुद ही जो है वो अपनी कोई घर बनाना पड़ेगा जिस घर के अंदर आप घुस करके उन जानवरों से बच सके, ठीक है। जिन्होंने आपको उस जंगल में छोड़ा है ना, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, वो आपको छोड़ के चले गए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई आपको जंगल में छोड़ दिया फिर चला जाए उसके बाद वहां से, राइट। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जब मैं तुम्हें इस दुनिया में छोड़ रहा हूं ना, ये दुनिया क्या है, एक जंगल की तरह है, ठीक है, जब मैं तुम्हें इस दुनिया के अंदर छोड़ रहा हूं तो आई एम नॉट लीविंग यू ऑल अलोन, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ करके यहां से जा नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया के अंदर मौजूद रहूंगा इस तरह से कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मदद के लिए, ठीक है, हिफाजत के लिए जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, इसको बंद कर दीजिए, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, ठीक है। तुम्हारा दुश्मन कौन है इस दुनिया के अंदर, ईमान वाले का दुश्मन या इंसान का दुश्मन, शैतान है, ठीक है। शैतान इज लाइक दोज एनिमल्स जो कि इंसान को जंगल के अंदर खा लेते हैं, ठीक है, शैतान उस तरह का दुश्मन है, वो हमें खाने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला ने हमें सबसे पहले क्या सिखाया, आउज बिल्ला पढ़ो, जब तुम आउज बिल्ला पढ़ोगे तो तुम मेरी हिफाजत में आ जाओगे, मैं शैतान से तुम्हें बचा लूंगा, ठीक है, तो आई एम नॉट लीविंग यू बाय योरसेल्फ। दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं कुरान शुरू करने से पहले वो क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना, आपसे पूछने की जरूरत नहीं, आपको बात तो पता ही है, आउज बिल्ला पता लग गई तो बिस्मिल्लाह तो सबको आता ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह का क्या मतलब है कि मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो के रहमान भी है और रहीम भी है, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या हैं, ये अल्लाह ताला के नाम हैं, कौन से नाम है, जाती नाम नहीं है, सिफाती नाम है, ठीक है। अल्लाह ताला के कितने सिफाती नाम है अब्दुल्ला आपको पता है, अल्लाह ताला के नेम्स कितने हैं, 99 नेम्स है अल्लाह ताला के, ठीक है, 99 अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, ठीक है। इन सिफाती नाम में से हर नाम जो है ना उसका एक यूनिक मीनिंग है, एक डिफरेंट मीनिंग है, हर नाम से डिफरेंट, हर नाम का एक अलग मीनिंग है, ठीक है, हर एक के अंदर कोई ना कोई अलग सी क्वालिटी है, जैसे अल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़े हैं, अल्लाह ताला जो है बहुत ऐसे हैं, अल्लाह ताला ऐसे हैं, राइट। लेकिन एक अल्लाह ताला की क्वालिटी है जिसके लिए अल्लाह ताला ने एक नाम यूज नहीं किया बल्कि दो नाम यूज किए उस क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, और वो क्वालिटी कौन सी है, वो मर्सी की क्वालिटी है, मर्सी रहमत वाली क्वालिटी है, ठीक है। इसके लिए दो नाम कौन से हैं, एक नाम है अर रहमान और दूसरा नाम है अर रहीम, ठीक है। अल्लाह ताला ने जब अपना कुरान अपना मैसेज शुरू किया ना, तो उसको शुरू कैसे ही किया, अल्लाह ताला ने मर्सी के जो दोनों नाम हैं उन दोनों नामों का तذکرہ किया, यानी हमें याद दिला रहे हैं कि देखो तुम जो मेरा कलाम पढ़ने वाले हो, तुम मुझसे जो बातचीत करने वाले हो ना इस कलाम को पढ़ करके, तो रिमेंबर कि आई एम द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट फॉरगिविंग, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रहीम हूं, बहुत ज्यादा मेरे अंदर रहमत है, एक मिनट, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि भाई अल्लाह ताला ना वॉन्ट्स टू हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है, वरना अल्लाह ताला चाहते तो बिस्मिल्लाह के साथ जो सिफात बयान करते वो जरा सख्ती वाली सिफात भी बयान कर सकते थे, जैसे कि अल जब्बार, जब्बार भी अल्लाह ताला की एक सिफत है। जब्बार का मतलब क्या होता है, जब्बार वो होता है जो कि जब कोई गलत काम करे ना और टूट जाए वो किसी गलती की वजह से, किसी चीज को कोई तोड़ दे या टूट जाए, तो जब्बार वो होता है जो कि बहुत प्रेस करके उस चीज को जो है ना दोबारा से बना देता है, ठीक है, जबर करने का मतलब होता है प्रेस करना, ठीक है। तो अल्लाह ताला की सिफात में से एक जब्बार भी एक सिफत है, ठीक है ना। मुंतकिमुन भी एक सिफत है, मुंतकिमुन का क्या मतलब होता है कि जब कोई बुरा काम करता है तो उससे बदला लिया जाता है, इंतकाम लेना जिसको कहते हैं ना उर्दू के अंदर, बदला लेना, ठीक है। तो अल्लाह ताला की सिफात में से एक मुंतकिमुन भी सिफत है। तो अल्लाह ताला जब कुरान शुरू कर रहे थे तो अपने सिफाती नामों में से मुंतकिमुन, जब्बारुन, मुतकब्बिरुन बहुत सारे नाम इस्तेमाल कर सकते थे ना, लेकिन अल्लाह ताला ने कौन से नाम सेलेक्ट किए, अर रहमान अर रहीम, ठीक है ना। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई आपको लेटर लिखे तो उस लेटर के जो फर्स्ट फ्यू वर्ड्स होते हैं ना, उस वर्ड से ही आपको पता चल जाता है उस लेटर को जब आप पढ़ते हैं कि ये जो लेटर है ये किसी फ्रेंड की तरफ से आया है या किसी एनिमी की तरफ से आया है, ठीक है ना, इस लेटर का जो आगे मजमून है, जो उसके अंदर कॉन्टेंट्स हैं, वो कॉन्टेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे वाले कॉन्टेंट्स होंगे या बहुत ही उसके अंदर कोई धमकी वगैरह काम टाइम की चीज होगी मेरे लिए, ठीक है। तो उस फर्स्ट फ्यू लेट वर्ड से ही आपको ये बात पता लग जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो फर्स्ट फ्यू वर्ड्स रखे ना अपने कुरान के, वो रहमत वाले वर्ड्स रखे, ताकि उसको शुरू करते ही हमारे दिल के अंदर एक कंफर्ट लेवल हमारा बढ़ जाए, ठीक है ना, हम इजी फील करें अल्लाह ताला की बात सुन पढ़ने के लिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर दोनों रहमान और रहीम वाली सिफत बयान करी। उसके बाद क्या है कुरान के फर्स्ट अल्फाज, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, कि तमाम की तमाम तारीफ किसके लिए, रब्बुल आलमीन, जिसने के इस पूरे के पूरे वर्ल्ड्स को, तमाम के तमाम वर्ल्ड्स को जिसने बनाया और जो उसको चलाता भी है, यानी उसको फीड भी करता है, उसकी सारी की सारी जरूरियात को पूरा भी करता है, ठीक है ना, वो होता है रब। तो सूरह फातिहा के फर्स्ट वर्ड्स क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, अर्रहमान अर्रहीम, फिर वही अर्रहमान अर्रहीम, दोबारा अल्लाह ताला रिपीट कर रहे हैं अपनी रहमत के दोनों सिफाती नामों को, ठीक है। तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रहीम है, बहुत करीम है। अच्छा, इसके ऊपर पहले तो आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या आप पूछना चाह रहे थे? हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो कि मुझे भी पूछना था आप लोगों से, ठीक है। तो वो दाऊद साहब वही पूछना चाह रहे थे, तो क्वेश्चन यही है कि रहमान और रहीम में फिर डिफरेंस क्या है, अगर दोनों रहमत की सिफतें हैं, ये दोनों रहमत से तारुफ करते हैं, तो डिफरेंस भी तो कोई होगा ना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तो क्या डिफरेंस है? ये इंग्लिश के दो वर्ड्स आपने बता दिए, लेकिन इससे कोई मतलब समझ नहीं आया, ग्रेशियस का क्या मतलब होता है, मर्सीफुल का क्या मतलब होता है। ग्रेशियस ठीक है, अगर इसमें मजीद इसकी तफसील की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यू विल नीड सम डिटेल, ठीक है, आपको समझ आएगा ग्रेशियस का क्या मतलब होता है, मर्सीफुल का क्या मतलब नहीं है आपको है? अच्छा, तो कोई बताएगा थोड़ा बहुत अगर किसी को पता हो इनके अंदर, माशाल्लाह we have about more than 25 students online. तो रहमान और रहीम में फर्क क्या है? रहमान अल्लाह ताला की सिफत जो है ना, ये अल्लाह ताला की सिफत इस दुनिया में जो अल्लाह की रहमत होती है, दुनिया की जिंदगी में जो अल्लाह ताला की रहमत होती है ना, वो रहमान वाली रहमत होती है, ठीक है। क्या मतलब कि इस दुनिया में आपको जितनी भी अच्छी चीजें नजर आती हैं, जितना भी लव नजर आता है, जितना भी मर्सी आपको इस दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह ताला के क्रिएशंस हैं उनके लिए आपको नजर आता है ना, वो सब का सब क्यों नजर आता है? क्योंकि अल्लाह ताला की रहमान की सिफत की वजह से नजर आता है, ठीक है। रहमान की सिफत जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है। रहमान वाली जो क्वालिटी है ना अल्लाह ताला की, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, क्या मतलब कि ये रहमत अल्लाह ताला की इंसानों के लिए भी है, जिन्नों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, पौधों के लिए भी है जिनको प्लांट किंगडम कहते हैं, और ये यानी इवन जो स्टोन्स हैं और वाटर है और एयर है और सब कुछ के लिए, ऑल आर अल्लाह क्रिएशंस, ठीक है ना। रहमान की सिफत जो है इट कवर्स एवरीथिंग, सो मच सो कि इवन वो लोग इंसानों में और जिन्नों में, ठीक है ना, सिर्फ इंसानों और जिन्नों के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कि अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है कि वो अल्लाह है, वो अल्लाह ताला को रब लॉर्ड मानते ही नहीं है, ठीक है, वो अल्लाह ताला के साथ पार्टनर्स एसोसिएट करते हैं, या वो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, ठीक है ना, जिनको कि हम काफिर कहते हैं, ठीक है। तो ये रहमानी की जो सिफत है ना, ये उनके लिए भी है, ठीक है। अगर ये ना होती, अगर अल्लाह ताला की रहमान वाली सिफत ना होती, तो जो काफिर हैं, अल्लाह ताला को ना मानने वाले लोग हैं ना, उनको ना तो खाने को कुछ मिलता इस दुनिया के अंदर, ना तो पीने के लिए पानी मिलता, ना ब्रीथ करने के लिए उनको ऑक्सीजन मिलती, ठीक है। ये कौन उनको ऑक्सीजन देता है? अल्लाह ताला के सिवा कोई उनको ऑक्सीजन नहीं दे सकता, ठीक है। खाना उनको कहां से मिलता है? बिकॉज अल्लाह ताला ने उनको खाने का इंतजाम किया है, इस वजह से उनको खाना मिलता है। ठीक है, वो खाना खा सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं और वो थ्राइव कर सकते हैं, दुनिया के अंदर जिंदा रह सकते हैं। अगर अल्लाह ताला उनको खाना देना बंद कर देना, कोई उनका पेरेंट हो, उनका फ्रेंड हो, कोई उनको खाने नहीं दे सकता। ठीक है, तो जो कुछ मिलता है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, यानी अल्लाह ताला अपने मानने वालों को भी देते हैं। मानने वालों में कौन लोग आ जाते हैं? सारे के सारे इंसान आ जाते हैं जो ईमान वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे जिन आ जाते हैं जो ईमान वाले हैं। सारे के सारे प्लांट किंगडम आ जाती है, जिनको नबातात कहते हैं, ये भी अल्लाह ताला को मानते हैं कि वो ही हमारा रब है। और सारे के सारे जो जो जिनको के जमादात कहते हैं, फिक्स्ड बॉडीज जितनी होती है ना, पत्थर, पानी, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, तो ये सब अल्लाह ताला को मानते हैं। तो अल्लाह ताला इन सब को रिस्क देते हैं। ठीक है, और जो अल्लाह ताला को नहीं मानते उनको भी अल्लाह ताला रिस्क देते हैं। ठीक है ना, तो रहमान की सिफत की वजह से, और जैसे कि उन्होंने लिखा है क्लासरूम में, उनको भी पढ़ लेते हैं जो उनका जवाब है हजमा साहबा का, कि रहमान फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग काफिर एंड मुस्लिम्स बोथ, रहीम विल बी फॉर ओनली मुस्लिम्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, रहीम वाली जो सिफत है ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, ये किन के लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ बिलीवर्स के लिए है, ईमान वालों के लिए। ठीक है, तो ये रहीम वाली सिफत कब स्टार्ट होती है अल्लाह ताला की? जब हम मर जाते हैं। ठीक है, जब मौत आ जाती है ना, उसके बाद रहमानी वाली सिफत का जो इफेक्ट है वो हमारे लिए खत्म हो जाता है और रहीमी वाली सिफत स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या मतलब? कि अगर काफिर होकर के कोई मरा, ईमान के बगैर कोई मर गया, तो अब उसको आगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको पीना नहीं मिलेगा, उसको जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आगे वाली जिंदगी में सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की रहीमी वाली सिफत एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, ये बात आपको जब बता दी तो इसके बाद आपसे ये से ये पूछना है कि ये बात क्लियर हो गई कि रहीमी वाली सिफत जो है ये सिर्फ ईमान वालों के लिए। ठीक है, रहमानी वाली सिफत सबके लिए है, लेकिन वो सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी तक है, इसके बाद नहीं है। ठीक है, रहीमी वाली सिफत इस दुनिया की जिंदगी के बाद, आलम बरज़ख वाली जिंदगी और फिर कयामत के दिन वाली जिंदगी और फिर जन्नत और जहन्नम वाली जिंदगी। ठीक है, तो वो फिर वहां पर जाके अप्लाई होती है। ओके, अब जो है पूछना ये है, ये जो ईमान है जिस ईमान की वजह से हम रहीमी वाली सिफत को डिजर्व करेंगे, ठीक है ना, ये ईमान है क्या? व्हाट इज ईमान? ईमान है बात मानना। किसकी बात मानना? अल्लाह की बात मानना। ठीक है, तो अल्लाह ताला की बात क्या है जिसको क्या आप मानते हैं? और भी कोई बताएं, थोड़े बड़े बच्चे और लोग बताएं, ईमान अल्लाह ताला की बात मानना या अल्लाह ताला की इबादत करना? नहीं, ईमान जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करना नहीं है। कुरान पढ़ना भी नहीं है, बिलीव करना, अच्छा करना, इन्होंने जवाब दिया अतात करना। और कोई ईमान के लिए दो वर्ड्स हमने आपको शुरू क्लासेस से भी बताए, ठीक है, और ये आप अक्सर सुनते भी रहते हैं, अगर आप बयान अटेंड करते हैं तो बयान के आखिर में हम कुछ पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, तौबा के कलिमात, तो उसके अंदर ईमान की डेफिनेशन होती है। वो क्या है? बिलीव करना। हाँ, बिलीव को भी तो थोड़ा एक्सप्लेन करें ना। आप म्यूट कर लीजिए जिनकी आवाज आ रही है क्लास में। जी सही, यानी माशाल्लाह, जैसे एक क्लास एक स्टूडेंट जवाब दिया इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब, ठीक है, जुबान से इकरार करना और अपने दिल से भी उसको टेस्टिफाई करना। किस चीज को टेस्टिफाई करना? जुबान से किस बात का इकरार करना कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है, यानी जो क्रिएटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिएटर है, ठीक है, तौहीद जिसको कहते हैं। आमंतु बिल्लाही व मलाइकती, और मलाइका के ऊपर ईमान रखना कि मलाइका अल्लाह ताला के क्या है, पार्टनर्स हैं, अल्लाह ताला के क्या है, मलाइका क्या करते हैं, सर्वेंट्स हैं, राइट, अल्लाह ताला के सर्वेंट्स हैं, अल्लाह ताला जो काम करवाते हैं वो मलाइका के जरिए से करवाते हैं, ठीक है, बारिश करवाना, मौत किसी को देना, किसी के जो है वो रूह फूंकना, ठीक है, इस तरह की सारी चीजें जो है वो मलाइका से करवाते हैं। तो वह मलाइकती व कुतुबी, ठीक है ना, और जो बुक्स आई हैं अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, जैसे कुरान अल्लाह ताला की किताब है, ठीक है, तो ये कहना, जुबान से कहना कि कुरान अल्लाह की किताब है और दिल में मानना भी, ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं ये कुरान अल्लाह की किताब है लेकिन दिल में सोच रहे हैं कि नहीं नहीं बस मैं तो ऐसी जुबान से कह दिया बेवकूफ़ बनाने के लिए मौलवी साहब को, है ना, मौलाना साहब को बेवकूफ़ बना दिया मैंने, कह दिया कुरान अल्लाह की किताब है, ठीक है ना, नहीं, ये ईमान नहीं है। बल्कि इकरारुम बिल लिसान का मतलब जुबान से कहना और दिल में भी इसको सच्चा मानना कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है, ठीक है, और तौरात इंजील जबूर ये जो सारी बुक्स हैं ये भी अल्लाह ताला की किताब है, ठीक है ना, वह कुतुब ही, ये तीसरी चीज हो गई, आमन तो बिल्लाही व मलाइकते ही व कुतुब ही व रसुल ही, और जो रसूल आए हैं, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जिब्राइल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है, जितने भी रसूल आए ये सब अल्लाह ताला के मैसेंजर, ठीक है, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर के ये आते थे, ठीक है। वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन, यानी जब हम मर जाएंगे तो फिर एक दिन आएगा जिसमें कि हमें जिंदा किया जाएगा, वल यौमिल आखिरी, ठीक है, और वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, कि अल्लाह ताला की तरफ से सारी की सारी खैर है सारी की सारी शर है, मिनल्लाह ताला, ठीक है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, वल बअसे बादल मौत, कि सिर्फ क़यामत के दिन कायम नहीं होगा बल्कि हमें उठाया भी जाएगा क़यामत के दिन, ठीक है ना, ये नहीं कि क़यामत के दिन कायम हुआ उसमें अल्लाह ताला आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं और मैं पड़ा सो रहा हूँ अपने कब्र के अंदर, ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे जिंदा भी किया जाएगा और जिंदा जो किया जाएगा तो फिर कयामत के सारे मामलात मेरे साथ भी होंगे, ठीक है, ये है ईमान। नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई, कुरान पढ़ने का नाम ईमान नहीं है, दीदो चले करवा, ठीक है। तो अब जो है ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है, वो ये करना है, बल्कि ये सवाल पहले करना था लेकिन अब चले मैंने जवाब खुद ही दे दिया, तो क्या करना था कि जी व्हाट मेक्स अस मुस्लिम, ठीक है ना, हमें मोमिन या मुस्लिम दोनों वर्ड्स सेम है, हमें मुसलमान या मोमिन क्या चीज बनाती है, ठीक है, हम क्यों मुसलमान है क्यों मोमिन है, ईमान की वजह से मुसलमान है, ठीक है, आप कुछ और कहना चाह रहे थे, सुनो यही बात ना, ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने कुछ सिनारियोज रखता हूं कि क्या हम इस वजह से मुसलमान हैं क्योंकि यहाँ पे जितने बैठे हैं सारे उर्दू बोलते हैं, जो सुन रहे हैं सारे उर्दू बोलते हैं, जब भी तो सुन रहे हैं क्लास, अदरवाइज वो इस क्लास में ना होते अगर उनको उर्दू ना आती, हम क्यों मुसलमान हैं क्योंकि हम सब उर्दू बोलते हैं, हाँ के ना, नहीं, राइट, अच्छा चलो उर्दू तो फिर ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की जबान है, अगर अरबी बोल रहे होते सारे के सारे तो हम इस वजह से मुसलमान होते हैं कि हम अरबी बोलते हैं, नहीं, ठीक है ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम इस वजह से मुसलमान नहीं हैं कि हम अरबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, ठीक है, अच्छा और लिखा था मैंने आपके लिए पॉइंट्स कि हम किस वजह से मुसलमान हैं कि क्या हम इस खजूर खाते हैं, खजूर मुसलमानों की डिश है, मशहूर है जी, मुसलमान खजूर खाते हैं, ठीक है ना, या जमजम का पानी पीते हैं, इस वजह से मुसलमान है, नहीं, या बिरयानी खाते हैं इस वजह से मुसलमान है, लाओ या दिहाड़ी खाते हैं इस वजह से मुसलमान है, नहीं, ठीक है ना, क्लियर है ये बात, अच्छा और पूछते हैं आपसे क्या हम इस वजह से मुसलमान है कि हम कुर्ता पजामा पहनते हैं या सर पर टोपी पहनते हैं, अहमद भूल गया टोपी, टोपी पहनने की वजह से मुसलमान होते हैं, ठीक है, या जुब्बा पहनने की वजह से मुसलमान होते हैं, وائٹ کلر کا لباس پہنتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ کالا کلر کا برقع پہنتی ہیں اس وجہ سے وہ مسلمان ہوتی ہیں؟ نہیں, رائٹ, لباس کی وجہ سے تو مسلمان نہیں ہوتے نا. ٹھیک ہے, اور کیا لکھا تھا میں نے؟ اچھا, اور آگے بڑھیں, اس سے زیادہ سیریس, یہ تو چند چند مذاق والی باتیں تھیں, کھانا پینا اور لباس اور رائٹ, اور بڑھیں, کیا ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک جیسی عبادت کرتے ہیں سارے کے سارے, ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں سب کے سب, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب جو ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا اس وجہ سے مسلمان ہیں؟ نہیں, ہم اس وجہ سے بھی مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کہ سارے کے سارے رمضان میں روزے رکھتے ہیں, سارے کے سارے جو ہے وہ حج میں آ جاتے ہیں, یہاں پہ عرفات کے میدان میں سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس وجہ سے بھی مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ داؤد صاحب, اینی آبجیکشنز؟ رائٹ, کیا ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ہم جمعے کے دن مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یا فجر کے وقت میں مسجد جاتے ہیں, اور ظہر کے وقت میں مسجد جاتے ہیں, اور عصر کے وقت میں مسجد جاتے ہیں, اور عشاء اور مغرب کے وقت میں مسجد جاتے ہیں؟ کیا ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے نا, اچھا, اب آپ سے ہم یہ سوال کیوں, یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب ہم اصل سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت یا کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اگر وہ آ جائے, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے جیسا کھانا کھانا شروع کر دے, ٹھیک ہے, کھجور کھانا شروع کر دے, زمزم پینا شروع کر دے, اوکے, اور وہ جو ہے وہ بریانی کھانا شروع کر دے ہماری جیسی, یا نہاری پلاؤ وغیرہ, یا ہمارے جیسا کپڑا پہننا شروع کر دے, ٹھیک ہے, ڈبا پہنے, ٹوپی پہنے, برقع پہنے, نقاب لگا لے اپنے منہ کے اوپر, یا حجاب پہن لے اپنے سر کے اوپر, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ ہماری زبان بولنا شروع کر دے اردو میں, اللہ رسول, بلکہ اس سے زیادہ الحمدللہ بولے, ماشاء اللہ بولے, جب کوئی اچھی بات لگے تو بولے ماشاء اللہ, جب کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو جائے تو کہے الحمدللہ, الحمدللہ یا برادر, یا کھانا کھانے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دے, یا یہ کہ وہ مسجد جا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے, فجر میں بھی مسجد آ جائے, ظہر میں بھی مسجد آ جائے, اور کبھی کبھار اس طرح سے مسجد آنا شروع کر دے, جمعے کے دن مسجد آ جائے کرے, تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں مسلمان ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی, اتنے سارے تو محنتیں کر رہے ہیں بےچارا, اور آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مولوی صاحب, آپ لوگ جو ہے نا کسی مسلمان نہیں ہونے دیں گے, مولانا لوگ زور کے پتے لگاتے رہتے ہیں جی, کیونکہ اس نے ابھی تک اقرارم باللسان اور تصدیقم بالقلب نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے صرف جو ہے یہ ظاہری اعمال کیے ہیں, یہ صرف ظاہری اعمال کیے ہیں, ان اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ اقرارم باللسان اور تصدیقم بالقلب کن چیزوں پر نہ کر لے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, 7 things in general. ٹھیک ہے, اور بھی ہیں چیزیں, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ, کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا, جو صفاتی نام ہے جس کے بارے میں ہم نے شروع میں ڈسکشن کری تھی نا, تو اللہ ویسا ہی ہے جیسے کہ اس کی صفات ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کروایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے, جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں کہ اللہ ایسے ہیں, اللہ ایسے ہیں, اللہ ایسے کرتے ہیں, اللہ ایسے کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی ایمان لے کر کے آئے. ٹھیک ہے, کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ ہی, ٹھیک ہے, و صفاتہ ہی, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, وَقَبِلْتُ کہ وہ قبول کرے, اقرار کرے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان سب کا اقرار کرے, اقرار کرے, عمل کرنے کی بات نہیں ہو رہی, کہ سارے حکموں کے اوپر جب وہ عمل کرے گا تب وہ مومن بنے گا, نہیں, ٹھیک ہے, عمل کی بات نہیں ہو رہی, اقرار کرنے کی بات ہو رہی ہے, ٹو ایکسیپٹ کہ یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کے یہ سارے کے سارے صحیح حکم ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سارے کے سارے حکم صحیح ہیں, قرآن کی ساری آیات صحیح ہیں, قرآن میں جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں جو کہ قرآن کی طرح کے احکامات ہیں, قرآن کے جتنا اسٹرینتھ, جتنا اسٹرانگ قرآن کی آیات ہیں, وہ اسٹرینتھ کی ڈسکشن ایک اور ڈسکشن ہے, جب آپ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو جتنے اسٹرانگ قرآن والے احکامات ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ جتنے احکامات دیے ہیں نا, وہ سارے احکامات بھی بالکل صحیح احکامات ہیں. جو ان سب باتوں کا اقرار کرے صرف اور صرف وہ مومن بنتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ایمان کی ساری بات, ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کسی ایسے شخص کی کہ جو کہ اللہ تعالی کے احکام کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے عبادتیں کرنی شروع کر دی, رمضان میں روزے رکھ لیتا ہے, سحری کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, اور افطاری کے وقت اپنا روزہ کھول لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے نا میں ان کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو ریلیجنز ہیں, ریلیجنز, ٹھیک ہے, جن کو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وے آف تھنکنگ, کہ جی سوچنے کا ایک انداز, کہ جی مرنے کے بعد جو ہے نا وہ دفن نہیں کرنا چاہیے انسانوں کو, ٹھیک ہے, کیونکہ دفن کریں گے زمین کے اندر تو زمین کے اندر پلیوشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور زمین کی ریسورسز جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے نا ہمیں جو ہے وہ مرنے کے بعد جو باڈی ہے نا انسان کی, اس کو جو ہے وہ کریمیٹ کر دینا چاہیے. کریمیٹ کرنے کا مطلب پتہ ہے کہ اس کو نا ایک آگ جلا کر کے اس آگ کے اندر ڈال دینا چاہیے, تاکہ جلتے 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 وہ باڈی جو ہے وہ پوری کی پوری ایشز بن جائے, راکھ بن جائے. آج کل جو ہے وہ آگ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آج کل مشینز ہوتی ہیں جن کو کریمیشن مشینز کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان مشینز کے اندر پوری کی پوری باڈی ڈالتے ہیں, اور وہ ایک طرح ہیٹر جیسے ہوتا ہے نا آپ کے گھر کے اندر اوون ہوتا ہے, اوون کے اندر کیک بیک کرتے ہیں نا, تو وہ اوون کی طرح سے ہوتی ہے, اس میں جس طرح کیک ڈال کر کے بیک کر دیتے ہیں نا, اسی طریقے سے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ اوون ہوتا ہے کہ اس کے اندر باڈی کو ڈال دیتے ہیں اور پھر ایک بٹن دبا دیتے ہیں, وہ برن ہونا شروع ہوتا ہے, جلتا ہے جلتا ہے جلتا ہے, اور اتنا اس کے اندر ہیٹ کریٹ ہوتی ہے کہ باڈی جو ہے وہ راکھ بن جاتی ہے, ایشز بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی کہے کہ جی میں نے تو ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں اور میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور میں یہ سب بھی مانتا ہوں کہ ہاں فرشتے بھی ہیں, رسول بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن مرنے کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اگر دفن کریں گے نا تو وہ تو سارے کے سارے پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی دنیا میں دفن کرنے کی وجہ سے, تو کریمیٹ کرنا جو ہے نا یہ زیادہ صحیح کام ہے کرنے کا. تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فَأَقْبَرَهُ, اللہ تعالیٰ نے قبر میں ڈالنے کا حکم فرمایا ہے. قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ بات کنفرم ہے. کیسے پتہ لگتی ہیں چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے؟ کیونکہ ہمیں خواب آتے ہیں, مولویوں کو خواب آتے ہیں, شیخ صاحب کو خواب میں آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو ایسے کرنا چاہیے. نہیں نا, قرآن ہے نا کمیونیکیشن چینل ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, وہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا. کچھ چیزیں قرآن کے اندر ہیں, کچھ چیزیں نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر ہیں. اس سے پتا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, اس سے نہیں پتا لگتا کہ ہمارے خیال میں کیا چیز اچھی ہے, ٹھیک ہے نا. دفن کرنے کے بجائے کریمیٹ کر دینا زیادہ اچھا ہے انوائرمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ دفن کرنے کے بجائے کریمیٹ کرنا اچھا ہے, وی آر ناٹ مسلم اینی مور, وی آر آؤٹ آف اسلام. سمجھ میں آ گئی بات, ٹھیک ہے. اچھا اس کا دوسرا سیناریو کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اسلام کے اندر ساری باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہندوازم کی یہ کریمیشن والی بات مجھے اچھی لگتی ہے. مجھے اسلام کی ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, بیوٹیفل ریلیجن اسلام, آئی لو اسلام, بٹ آئی تھنک دیٹ دس کریمیشن تھنگ فرام ہندوازم is better than Islam's philosophy of burial. ٹھیک ہے, تو کوئی وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ نہیں, وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری بات آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں نا, اسلام ہمیں ان سارے انسانوں سے محبت سکھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. All human beings are children of the same father and same mother. Adam alayhi salam baap hain, amma Hawa hum sab ki walida hain. Theek hai na? So in this humanity, we are all brothers and sisters. Theek hai na? So we are supposed to be merciful and loving to all human beings. Lekin iska matlab ye nahi hai. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बिलीव्स को भी अच्छा कहना शुरू कर दें. इंसानों से लव करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके बिलीव्स की तारीफ करना शुरू कर दें, जो बिलीव्स जो है वो इस्लाम की बिलीफ के खिलाफ हैं. ठीक है, इस तरह की जो आप तारीफ करेंगे ना उनके किसी बिलीफ सिस्टम की, उनके किसी अकीदे की, अगर आप तारीफ करेंगे तो क्या होगा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे. ठीक है ना, देखें अल्लाह ताला ने इंसानों को सबको आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का चिल्ड्रन बनाया, ठीक है, औलाद बनाया. ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन दोनों में एक क्राइटेरिया रखा है जिसकी बेसिस पर अल्लाह ताला ने इनको दो ग्रुप्स में बनाया. ठीक है ना, दो ग्रुप्स के अंदर बनाया. ये दो ग्रुप्स कौन से हैं, ये अकीदे की बेसिस पर ग्रुपिंग है. ठीक है, एक अकीदा है मानने वाला अकीदा, इकरारुम बिल्लिसान और तस्दीकुम बिल्कल्ब, इसको अकीदा कहते हैं. ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी बिलीव, दिस इज आवर बिलीफ. ठीक है, कि हम इन सारी चीजों के ऊपर बिलीफ रखते हैं, और जो इनके ऊपर बिलीफ नहीं रखता तो वो एक दूसरी कैटेगरी के अंदर आ जाता है जो कि इनकार करने वाले हैं. ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्मों का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह ताला की किताबों का, अल्लाह के रसूलों का, यानी किसी भी चीज का, चाहे वो सबका इनकार करें, चाहे वो इनमें से दो तीन चार बातों का इनकार करें, जिसका भी करें, तो वो इसके अंदर से निकल जाते हैं. ठीक है, अब हम एक दूसरे के साथ ना मोहब्बत के साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन इन चीजों को शैतान क्या करता है, मिक्सअप कर देता है हमारे साथ. ठीक है ना, वो किस तरह मिक्सअप कर देता है, कहता है कि भाई तुम एक दूसरे के साथ उस वक्त तक अमन के साथ नहीं रह सकते जब तक कि तुम उसकी भी बात को ठीक ना कहो, कि वो जो कर रहा है वो भी ठीक कर रहा है, मैं जो कर रहा हूं मैं भी ठीक कर रहा हूं, वो जो कर रहा है वो भी ठीक कर रहा है. ठीक है, ये जो होता है ना शैतान का डिसेप्शन होता है. ठीक है, बिकॉज वो चाहता क्या है कि सारे इंसान जो है ना वो सारे के सारे काफिर हो जाएं, सारे ही जहन्नुम में चले जाएं. ठीक है, तो वो इस तरीके से काफिरों को तो उसने ऑलरेडी जो है वो इस सक्सेसफुल हुआ है कि वो डिनायर्स हैं अल्लाह ताला की अजमत के, अल्लाह ताला की जो भी पोजिशन है अल्लाह ताला की डिजर्विंग पोजिशन, वो उसके यानी उसको डिनाई करते हैं. ठीक है, लेकिन वो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ता, मुसलमानों को भी किसी तरीके से ना इस तरीके से कि वो भी काफिरों की किसी बात को पसंद करना शुरू हो जाए, उनकी तारीफ करना शुरू हो जाए, ताकि वो भी इस मुसलमानों वाले कोर्ट से निकल करके काफिरों वाले कोर्ट में चले जाए. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि जैसे टेनिस के कोर्ट्स होते हैं ना, टेनिस होता है या बैडमिंटन होता है, बीच में एक नेट लगा होता है ना, उधर एक टीम होती है, इधर दूसरी टीम होती है. ठीक है, तो इंसानियत को भी अल्लाह ताला ने दो टीम्स में बनाया है, एक तरफ काफिर वाली टीम है, डिनायर वाली टीम, और एक तरफ जो है वो एक्सेप्टर वाली टीम है. ठीक है, तो शैतान क्या कहता है, देखो तुम्हें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और बहुत एक दूसरे के साथ जो है ना वो अमन के साथ और पीस के साथ रहना चाहिए, तो तुम जो है ना वो किसी तरीके से ये करो कि ये दोनों टीम्स खत्म हो जाएं, ये सब की सब एक टीम बन जाए. ठीक है, तो जो मुसलमान होता है जिसको कि ईमान जिसका स्ट्रांग नहीं होता, उसको ये सारी चीजें नहीं पता होती. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ये समझता है कि अगर मैं उनकी बातों की भी तस्दीक कर दूंगा ना, कि जहाँ हिंदुइज्म भी बड़ा अच्छा रिलीजन है और क्रिश्चियनिटी भी बड़ा अच्छा रिलीजन, दे आर सो नाइस पीपल, दे आर सो नाइस टू मुस्लिम्स, व्हेन देयर वाज अ ट्रेजेडी इन देयर कंट्री ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब. ठीक है ना, ऑल ऑफ देयर वुमेन स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब एंड ऑल ऑफ देयर मेन स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द मस्जिद्स. तो व्हाट इज रॉन्ग विद देम, राइट, व्हाट इज रॉन्ग विद देम, दे आर सच कूल पीपल, दे आर सो नाइस पीपल. ठीक है ना, तो दैट मींस देयर रिलीजन इज ऑल्सो अ गुड रिलीजन. Their religion must be good too. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना जब हम कोई बात कह देते हैं तो it is actually what it means is कि we are refuting Islam. We are automatically refuting Islam. We don't have to spell it out. हमें spell out करने की जुबान से अल्फाज कहने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बिकॉज इसका मतलब जो है वो यही होता है कि जी उनका जो रिलीजन कह रहा है अल्लाह ताला के बारे में कि अल्लाह ताला का एक बेटा भी है. ठीक है, ये बात ठीक है, ठीक है, اور اسلام جو کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا جو ہے وہ بہت بری بات ہے, بہت ہی بڑی بات ہے. سب سے پہلے ہم نے سورہ کہف کے اندر کیا پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے بالکل شروع میں کیا فرماتے ہیں, کبرت کلمتن تخرج من افواہہم, کہ یہ جو کلمہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یہ بہت بڑا اور بھاری کلمہ ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا بنا لیا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, ان کے پاس اس طرح کی کوئی نالج نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو نہ تو ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہوا ہے, کبھی انہوں نے اس بات کو دیکھا نہیں, کبھی انہوں نے اس بات کو سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اعلان ہوا کہ جی میں نے اب بیٹا بنا لیا, میرا کوئی بیٹا پیدا ہو گیا. نہ ان کے باپوں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات سنی تھی, لآبائہم, نہ ان کے باپوں نے کبھی اس طرح کی بات سنی تھی. کبرت کلمتن, یہ بہت ہیوی کلمہ ہے, تخرج من افواہہم, جو کہ ان کے منہ سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹا قرار دینا یہ کوئی چھوٹی موٹی مذاق نہیں ہے, یہ اٹس ناٹ سم اپریل فول ٹائپ کا چھوٹا سا جو, ٹھیک ہے نا, اٹس اے ویری ویری ہیوی تھنگ. ٹھیک ہے, ان یقولون الا کذبا, دے آر ناٹ سیئنگ اسپیکنگ اینی تھنگ ایکسپٹ لائی, دے آر لائنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے, تو اگر ہم کہیں کہ جی ہاں جی ان کا ریلیجن بھی بڑا اچھا ہے, تو اٹس اے ویری نائس ریلیجن, دیٹس وائی دے آر سو نائس پیپل. تو ان کا ریلیجن کیا ہے, ان کا ریلیجن تو بیسڈ ہے ٹرینیٹی کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ایک بیوی بھی تھی, ٹھیک ہے, مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہیں, کیونکہ یہ بیسک ٹینٹس آف دا فیتھ کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ اتنے سینسیٹیو کیوں ہے اس بارے میں, یہ بات کر کے ہم ان شاء اللہ کا ختم کریں گے کہ وائی از اللہ سو سینسیٹیو اباؤٹ اٹ. بھائی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی کوئی شخص جو ہے اگر بہت بڑا ہوتا ہے, بہت امیر کبیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت اس کے سرونٹس ہیں, اس کی بہت بڑی فیملی ہے, تو کہتے ہیں نا اردو کے اندر جی اس کا دل بھی بڑا بہت بڑا ہوتا ہے, ہے نا, اس کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو لوگوں کی جو چھوٹی موٹی مسٹیکس ہوتی ہیں, کبھی کسی نے کوئی چوری کر لی اس کی فیملی میں سے, کبھی کسی نے کوئی اور غلط کام کر لیا, تو وہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا ان سب چیزوں کا, چھوٹی موٹی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے معاف کرنے والے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے, why doesn't Allah forgive them, کہ بھئی انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے کیوں فرگیو نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے, اور یہ اصول جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں دکھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کی لائف پریزنٹیشن ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. وہ کس طرح دکھاتے ہیں کہ ایک فار ایگزامپل ایک فادر ہے, باپ ہے, اس باپ کے بہت سارے بچے ہیں. ٹھیک ہے, باپ جو ہے وہ اپنے سارے بچوں کے ساتھ بہت مرسیفل ہوتا ہے, ہی لوز آل آف ہز چلڈرن. ٹھیک ہے نا, مدر شی لوز ہر چلڈرن ایون مور. ٹھیک ہے, بچے غلطیاں کر دیتے ہیں, کبھی کوئی چیز توڑ دی, کبھی کچھ خرابی کر دی, کبھی کسی دوسرے کو مار دیا, کبھی کسی کے ساتھ کچھ کر دیا, right? تو اگر وہ باپ اور وہ ماں جو ہوتے ہیں نا, اس کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور اس کے پاس بہت سارا کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, بھائی سارے میرے بچے ہی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے کچھ غلط کام کر لیا, کسی نے کچھ کر لیا, تو بھائی ان دی اینڈ ٹھیک ہے, وہ تھوڑا بہت کبھی کسی کو پنش کر دیا, کبھی کسی کو ذرا ریپریمینڈ کر دیا, کبھی کسی کو رائٹ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, لیکن ان دی اینڈ دے آر اسٹل مائی چلڈرن, آئی ول فورگیو آل آف دیم. ٹھیک ہے, لیکن اگر ان میں سے ایک بچہ یا کچھ بچے ایسے ہوں جو کہ یہ کرنا شروع کر دیں کہ کہنا شروع کر دیں کہ اب یہ جو صاحب اپنے آپ کو میرا ابو سمجھتے ہیں, یہ جو صاحب ہے نا جو مجھے اپنے آپ کو میرا ابو سمجھتے ہیں, میں تو ان کو ابو مانتے ہی نہیں, میرا ابا کوئی تھوڑی ہے, میں تو ان کو ابو مانتے ہی نہیں. اب سارے بھائی بہن اس کو سمجھا رہے ہیں, اللہ کے بندے تم بھی تو ہماری طرح کے اس کے بچے ہو, تم بھی اس کے بیٹے ہو, اور اس نے تمہارے لیے بھی تو سارا کا سارا انتظام کیا ہوا ہے, تم بھی اسی کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہو, تم اسی یہی تمہارے لیے ساری کی ساری ضروریات کو پرووائڈ کرتا ہے, اور تم جو ہے وہ ڈینائی کرنا شروع ہو گئے کہ نہیں میرا ابا ہے ہی نہیں, یا اما کو بولنا شروع ہو جائیں کہ اما یہ جو اما سمجھتی ہیں اپنے آپ کو جو خاتون میری ہیں, یہ میری کوئی اما اما نہیں ہے, میں نہیں مانتا کہ میری ماں ہے. تو جب وہ بالکل اس طریقے سے ڈینائی کر دیتے ہیں نا کہ نہیں ہے ہی نہیں یہ ماں, ہے ہی نہیں یہ باپ, ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہ ریبیلین والا معاملہ ہو جاتا ہے. ठीक है, ये रिबेलियन वाला मामला हो जाता है। ऐसे ही है कि जैसे किसी कंट्री के अंदर जो सिटीजन होते हैं, वो सिटीजन जो होते हैं वो चाहे जितने भी गलतियां करें, चोरी कर दें, डाका डाल दें, या वो जो है वो कोई और इस किस्म का काम कर दें, तो उनको थोड़ी बहुत सजा दे करके उनका मामला खत्म हो जाता है। लेकिन कोई कहे कि जी ये तो है ही नहीं, हम तो इस मुल्क को मानते ही नहीं है, हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है, हम प्रेसिडेंट साहब को मानते ही नहीं है, ठीक है, तो अब उसको जो है ना वो बड़ी सजा देते हैं, ठीक है ना, कोई मेजर सजा देते हैं, कैपिटल पनिशमेंट टाइप की कोई चीज देते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला के साथ कुफर करना जो है ना वो ऐसे ही है कि अल्लाह ताला का जो मुकाम है उस मुकाम का ही इनकार कर देना, ठीक है, कि अल्लाह ताला पालने वाले नहीं, ये अल्लाह ताला पालने वाले नहीं है, पालते तो वो लक्ष्मी देवी है, वो मुझे पालती है, फलाने साहब देव है या फलाने देवता जो है वो जो है वो बारिश बरसाते हैं, उस बारिश से जो है वो हमारा काम चलता है, ठीक है ना, फलाने जो है वो कोई और काम करते हैं, फलाने कोई और काम करते हैं, अल्लाह ताला जो है ना वो तो सारे काम नहीं करता, ठीक है। अल्लाह ताला को या तो डिनाई कर दिया या अल्लाह ताला की जो पावर है उस पावर को जो है वो रिड्यूस कर दिया, ठीक है, कि इतनी पावर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की पावर जो है ना वो बहुत थोड़ी सी पावर है, दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है, इसको मदद के बगैर तो अल्लाह ताला काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुफर, ये डिनायल या अल्लाह ताला की जो जो डिजर्विंग पोजिशन है ना उसको डिमिनिश कर देना जो है ना, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे बाकी सारे गुना माफ कर दूंगा लेकिन मैं ये वाला गुना तुम्हारा माफ नहीं करूंगा, ठीक है, जिसको कि शिर्क कहते हैं और जिसको कुफर कहते हैं, कुफर और शिर्क एक ही चीज है ये, ठीक है, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, बाकी सारे गुना मैं तुम्हारे माफ कर सकता हूँ, ठीक है। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि अगर तुम मेरी जो जो पोजिशन है ना, मेरा जो माइट है, मेरा जो 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 मुकाम है रब वाला मुकाम, ठीक है, और जो मेरी सिफात है उनको तुम अगर मान लेते हो ना, फिर तुम अगर गलतियां करोगे तो तुम्हारी ये गलतियां जो है वो मैं माफ कर दूंगा। अब कर दूंगा के अंदर टाइम डिटेल है, अभी माफ कर दूंगा या चंद दिनों के बाद माफ करूंगा या कब्र में माफ करूंगा या कयामत के दिन माफ करूंगा या जहन्नम के अंदर थोड़े दिन तुम्हें जलाने के बाद माफ करूंगा, ये डिटेल जो है ये तो फिर थोड़ी सी और डिस्कशन हमें करनी पड़ेगी, तब बात आएगी, ठीक है। लेकिन मानने वाले हो, ठीक है, जिसको कहते हैं ईमान, तुम्हारी जो गलतियां हैं वो माफ हो जाएंगी, ठीक है, ना कभी माफ हो जाएंगी, ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ अरसे के बाद, ठीक है। तो इस वजह से ना अल्लाह ताला की फॉरगिवनेस जो है, रहीमी वाली जो सिफत है, वो ईमान के साथ मशरूत है, ठीक है ना, डिनायल के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक आखिरी सवाल करके हम खत्म करनी है, वो ये भाई ईमान वाले तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, माशाल्लाह इधर जो बैठे हैं सारे के सारे ईमान वाले हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान में कहते हैं कि जी सारे मुसलमान हैं, 90% मुसलमान हैं, 99% मुसलमान हैं, इंडिया के अंदर भी करोड़ों मुसलमान हैं, ठीक है, और भी दुनिया के अंदर राइट 2 बिलियन मुस्लिम्स कहते हैं, ओके, तो ये सारे मुसलमान तो हैं अल्लाह, यानी ये तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इनमें से भी बहुत सारे हैं कि जिनको अल्लाह ताला पनिश करते हैं। पनिशमेंट जो है ये भी एक रियलिटी है, दुनिया में भी पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, क्या पनिशमेंट हमें दुनिया की नजर आती है कि अल्लाह को मानने वाला है लेकिन अच्छी खासी बेइज्जती उसकी हो रही होती है, ठीक है ना, ये जो इज्जत का खराब होना है ना, बेइज्जत होना जिसको कहते हैं, जलील और रुस्वा होना कहते हैं, ये अल्लाह ताला की पनिशमेंट होती है, ठीक है ना, और ये हमें इस दुनिया में नजर आती है मुसलमानों के साथ, वी ऑल नो दैट, ठीक है ना, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि मुसलमान दुनिया के अंदर कितने जलील होते हैं, तो ये पनिशमेंट है, तो क्यों पनिशमेंट देते हैं। अच्छा, फिर हमें हदीसों से, सही हदीसों से भी पता लगता है कि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जिनको नबी अलैहि सलाम ने जहन्नुम में जलते हुए देखा है, ठीक है ना, मिराज वाली हदीस जो है तो उसमें जो सदाएं देखी हैं कि कहीं कोई किस तरीके से उसको सजा मिल रही, वो सारे कौन लोग थे, काफिर नहीं थे, मुसलमान थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हदीसों से हमें कब्र के अजाब का भी पता लगता है मुसलमानों के ऊपर, तो अल्लाह ताला क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं मुसलमानों को जबकि ये सारे मानने वाले हैं, क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं, पनिशमेंट्स गुना माफ हो जाए, तो भाई अगर अल्लाह ताला इतने बड़े हैं और अल्लाह ताला के सामने कोई हैसियत नहीं रखती छोटे मोटे, तो छोटे ही गुना है ना, मतलब भाई हम हमारे लिए ये बहुत बड़े गुना है, ठीक है। कोई हमें आकर के अगर बहुत बुरी तरीके से मारता है ना, ठीक है, तो हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है, हमारे एतबार से बहुत बड़ा गुना है क्योंकि हमें बहुत तकलीफ हुई, ठीक है ना। या ये कि किसी ने हमारे बिलवड बच्चे को मार दिया करके, ठीक है, तो हमारे एतबार से उसने बहुत बुरा काम किया, ठीक है। लेकिन अगर आप जस्ट टू डू अ लिटिल इमेजिनेशन ट्राइंग टू लुक एट इट फ्रॉम अल्लाह साइड, ठीक है, कि किसी बंदे ने आके किसी के छोटे से बच्चे को कत्ल कर दिया, ठीक है, जैसे कि ये न्यूजीलैंड के अंदर कितने बच्चों को मार दिया, कितनी औरतों को, कितने मर्दों को, ठीक है, अल्लाह की तरफ से अगर देखें तो उसने तो कोई खास बुरा काम तो नहीं किया, ठीक है, क्या हुआ, मरना तो सब नहीं था, है ना, सबने मरना था ना, वो भी मर गए, उनकी मौत आई थी, मर गए, तो उसने जिसने उनको मारा तो उसने कौन सा ऐसा बुरा काम कर दिया, he just made it easy for them or he just did the job, भाई वो काम इज़राइल अलैहिस्सलाम ने भी तो करना ही था ना, जान निकालने वाला काम इज़राइल अलैहिस्सलाम ने करना ही था, तो वो उस गनमैन ने आके कर दिया, है, तो क्या बुरा काम किया भाई, तो क्यों खामखा उसके पीछे पड़े हुए कुछ सजा मिलेगी और ये होगा वो होगा। खैर वो तो था काफिर, एज्यूम करते हैं कि कोई मुसलमान आता, ठीक है, और मुसलमान आकर के 50 लोगों को मार देता, ठीक है, अब वो मुसलमान जो है वो मुसलमान क्यों है, बिकॉज ही इज अ बिलीवर, ही इज एन एक्सेप्टर, ठीक है ना, हाँ उसने ये बहुत बड़ा गुनाह का काम किया कि 50 लोगों को मार दिया, ठीक है, तो कौन सा इतना बुरा काम कर लिया उसने, अगर अल्लाह की तरफ से देखें, अल्लाह तो इतने बड़े हैं, अल्लाह ताला के तो 50 तो क्रिएशन नहीं है, अल्लाह ताला की क्रिएशन जो है वो तो ट्रिलियंस एंड जिलियंस एंड पता नहीं और क्या क्या उसकी बात टर्म्स होती हैं, उनसे भी ज्यादा अल्लाह की क्रिएशन है, 50 लोग को थोड़ी अल्लाह की क्रिएशन, तो 50 लोगों की वजह से उसको सजा क्यों देंगे अल्लाह ताला, जबकि वो बिलीवर भी है, जबकि वो बिलीवर भी है ना, तो क्यों सजा देंगे। तो इसमें जुल्म क्या होगा फिर, अगर उसको सजा नहीं देंगे तो जुल्म क्या होगा जी। तो पहली वाली बात थी, ठीक है, वो थी कि अल्लाह ताला काफिरों को क्यों सजा देते हैं, ठीक है, काफिरों का सजा देते हैं उनके डिनायल की वजह से, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया रसूल को, ठीक है ना, अल्लाह की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, अल्लाह की शान के अंदर कमी कर दी, ये सारी रीजंस हैं काफिर को सजा देने वाली, ठीक है। ईमान वाला ये वाले काम नहीं करता, तो फिर ईमान वाले को गुनाह के ऊपर सजा क्यों मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला, जवाब आपका वैसे सही है लेकिन उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, आप कुछ और कह रहे थे। माशाल्लाह, बिल्कुल आपने जवाब को मुकम्मल कर दिया, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है, इनजस्टिस जिसको कहते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला इंसाफ वाले हैं, इंसाफ का मतलब क्या होता है कि जो जितना डिजर्विंग होता है उसको उतना देते हैं, ठीक है ना, और जो जिस चीज को डिजर्व नहीं करता उसको उतना नहीं देते, अगर नॉन डिजर्विंग को देना शुरू कर दें तो ये चीज भी इनजस्टिस है, ठीक है ना, और अगर डिजर्विंग को ना दें तो ये भी इनजस्टिस है, जिसको के अरबी में जुल्म कहते हैं, ठीक है। अब एक बंदा जो है उसने इतनी मेहनत करी गुनाहों से बचने के ऊपर, गुनाहों से बचना आसान काम तो नहीं होता है, अच्छी खासी आपको अपने आप को रोकना पड़ता है ना, ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, नमाज का वक्त आए आपको उठ करके नमाज पढ़नी पड़ती है, आपको रमजान के अंदर रोजे रखने पड़ते हैं, इतने लोग आपको झूठ के ऊपर कन्विंस कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आप कायम रहते हैं कि नहीं अल्लाह एक ही है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, हालांकि पूरा मीडिया जो है वो यही करना चाह रहा है कि तुम किसी तरह से काफिर हो जाओ। तो इन सारे प्रेशर को रेजिस्ट करना ये आसान काम तो नहीं है ना। तो एक बंदा जो है वो अकायद को भी कंफर्म अपने यानी बचा के रखने के ऊपर मेहनत करता है, अपने अकीदों की हिफाजत करता है, अपने औलाद की हिफाजत की अकीदे की हिफाजत के लिए इतनी मेहनत कर रहा होता है, फिर आमाल करने के अंदर उसको इतनी सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर गुनाहों से बचने के लिए उसको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो इतना उसने सारा काम किया और उसको भी अल्लाह ताला जन्नत में घर अता फरमा दें, बहुत अच्छा सा एक पेंट हाउस, اور ایک شخص جو ہے جس نے کہ نہ تو وہ گناہوں سے بچا, ٹھیک ہے, نہ جو ہے وہ اس نے اعمال اچھے کیے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پینٹ ہاؤس عطا فرما دے, ٹھیک ہے, بغیر کسی سزا کے, بغیر کسی کریکشن کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, جسٹس کے خلاف ہے, اور اللہ تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا مل رہی ہوتی ہے, چاہے اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کر کے ان کو سزا مل رہی ہو, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی کے ہاتھ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ کہ مرنے کے وقت جو ان کے اوپر روحانی تکلیف آتی ہے جس کو سکرات الموت کہتے ہیں, غمرات الموت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو روحانی پینز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہ کی سزا دے رہے ہوتے ہیں, اور جب سزا مل گئی تو پھر اب گناہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, یا یہ کہ قبر کے اندر سزا مل رہی ہوتی ہے تاکہ وہ گناہ ختم ہو, ٹھیک ہے نا, سزا کے ساتھ ختم ہوں گے, اس کے بغیر ختم نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری سزائیں جو ایمان والوں کو ملتی ہیں وہ اس جسٹس کی وجہ سے ملتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس جسٹس کے اندر بھی رحم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ جس کے اندر انجسٹس, ظلم اور یہ بری باتیں جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی انٹر نہیں ہو سکے گا, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے. تو اس دنیا کے اندر سزائیں مل رہی ہوں یا قبر میں سزائیں مل رہی ہوں یا قیامت کے دن کی مشکلات اور تکلیف ہوں, ان سب کے ذریعے سے وہ گندگیاں جو ہمارے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے, وہ ساری کی ساری گندگیاں بھی کلین آف ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ ہم اس قابل بن سکیں کہ ہم جنت میں جا سکیں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایک بہت آسان حل ہمارے لیے کیا رکھا ہے, وہ یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت کی وجہ سے ہمیشہ اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا, ٹھیک ہے نا, وی آلویز ہیو این آپشن آف آسکنگ فار اللہ's forgiveness. جو بھی گناہ کر لیا, جیسا بھی گناہ کر لیا, ٹھیک ہے نا, ایز لانگ ایز وی بلیو ان اللہ, ٹھیک ہے نا, وی ڈو ناٹ ڈینائی اللہ, ہم ایمان کے تقاضوں کو یا عقائد کو پورا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم جو بھی گناہ کیا ہو, جس کو بھی تکلیف پہنچائی ہو, جیسا بھی کیا ہو, اگر ہم اس کے اوپر نادم ہو جائیں, شرمندہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں نا, تو بغیر پنشمنٹ کے بھی معافی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری, ٹھیک ہے نا. پھر یہ دنیا کی ذلت و رسوائی اور قبر کی جو ہے وہ مار پیٹ اور قیامت کے دن کی جو ہے وہ تکالیف, ان کی بھی پھر ضرورت نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے. تو سب سے آسان ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے نا اس کو ہم اپنے توبہ کے ذریعے سے اس کو استعمال کر لیں, ٹھیک ہے نا. توبہ از لائک اے کی, رحمت کا جو ڈور ہے اس کے اندر یہ توبہ والی کی ڈالیں اور اس کو کھول لیں, دس از دا ایزیسٹ تھنگ, ٹھیک ہے. اگر رحمت کی دروازوں کو ہم توبہ کی کے ذریعے سے نہیں کھولیں گے تو پھر وہ رحمت کا دروازہ جو ہے نا اس تک پہنچنے کے لیے پھر یہ ساری کی ساری مار پیٹ والا کام جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑے گا, سزاؤں والا کام اور ذلت و رسوائی والا کام اور سب کچھ, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی ہماری ان آیات کی تھوڑی سی تفسیر. تو بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کو منانا, سب سے زیادہ آسان ہے, بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. تو آج کی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم سب اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہم نے غلطیاں کوتاہیاں کر لی مانگتے ہیں, اور آئندہ نیکی کاری کی زندگی, نیکو کاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ابھی پوچھیں گے یا الگ سے پوچھنا ہے؟ ابھی تو وہ کلاس کے لیے اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کے یہ ساری چیزیں ہم اوپر پہنچا لیں.